शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेता तनतेऽसि नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं नतेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽय मायाद्य महीषसूनु विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽसि वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानि त्वं कञ्चुकेशीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथ शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतम् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्ध तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चिन्नमनेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां नयता ततास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि
सा ॐ शान्ति दक्षिण भारत में एक बहुत महान आत्मा कभी हुई थी 12वीं शताब्दी रामानुजाचार्य उनके जीवन में एक वृत्तांत है जब वो युवा थे तो ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम एक सतत खोज निरंतर लगन भगवान को पाने की प्यास और वो चाहते थे कि उनका भी कोई गुरु हो और वो गुरु की तलाश में वो श्रीरंगम से मदुराई लगभग 17 बार गए। एक व्यक्ति थे जिनका उन्होंने नाम सुना था, नाम भी, जो कि प्रकांड ज्ञानी पंडित थे, योगी थे, तपस्वी थे और उनको लगा था इन्हीं को मुझे अपना गुरु बनाना है। 17 बार उनसे भेंट करने गए पर गुरु ने उनसे बात तक नहीं की। दीक्षा देना तो बहुत दूर की बात, पर उन्हें वैसे ही लौटा दिया। वो एकांत में बैठ के रोते और जब लोगों ने ये खबर गुरु तक पहुंचाई तब उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि उसको बुला लाओ। और 18वीं बार जब रामानुजाचार्य उस गुरु के पास पहुंचे तब गुरु ने देखा इस युवक की सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसकी परमात्म भक्ति और ये देखकर उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं, एक ऐसा मंत्र कि जिसका जाप करते ही आत्मा संसार के सभी प्रपंचों से, सभी दुखों से, सभी पीड़ा से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाए और तुम इसके योग्य हो। और वो 8 अक्षरी मंत्र गुरु रामानुजाचार्य के कानों में फूंकते हैं और उससे कहते हैं कि एक बात याद रखना, ये मंत्र कोई भी अपवित्र आत्मा न बोल सके, कोई भी विकारी आत्मा, कोई भी सांसारिक प्रपंचिक आत्मा जो संसार के बंधनों में फंसी हुई है वो इस मंत्र का उच्चारण कभी ना करे। और तुम इस मंत्र को अत्यंत गुप्त रखना, इसकी गोपनीयता में ही इसकी शक्ति छप समाई है और ये मंत्र किसी को ना बताना, किसी को ना सुनाना, इतना ये पावन, इतना ये शुद्ध मंत्र है। ओम नमो नारायणा वो मंत्र था। रामानुजाचार्य इतना खुश हो जाता है कि जाते जाते रामानुजाचार्य सोचने लगते हैं कि मैं इस मंत्र का क्या करूं, इतना महान मंत्र मुझे मिल गया है जो आज तक किसी को नहीं मिला। और बहुत खुशी, अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए, नाचते हुए अपने गांव में पहुंचते हैं और वहां आने के बाद उनके साथ उनके 2 साथी या 2 शिष्य भी होते हैं। वो वहां का जो मंदिर है, मंदिर की ऊंची चोटी में जाकर खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं वहां से, आ जाओ सभी, आ जाओ सभी, मैं सभी के लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूं कि वो मंत्र तुम सबको मुक्त कर देगा, सभी दुखों से, सभी पीड़ाओं से, संसार की सभी वेदनाओं से। भीड़ जम जाती है, लोगों के तरफ चारों तरफ एक खबर फैल जाती है, कोई एक महापुरुष आया है, वो एक ऐसा मंत्र लेकर आया है जो हमें संसारिक प्रपंच और संसारिक दुखों से मुक्त कर दे। और जब सब एकत्र हो जाते हैं तो रामानुजाचार्य वहां पर चट्टान पर खड़ा रहकर पुकारता है कि मैं तुम सबके लिए एक मंत्र लाया हूं। वो मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उस मंत्र का जाप करते ही क्षण भर में, पलक झपकते ही, संसारिक दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। भीड़, भीड़ में जल्लोष, भीड़ में आवाजें गूंजने लगती है जय जयकार की, और उस जय जयकार के बीच रामानुजाचार्य मंत्र फूंकता है, सभी को मंत्र देता है एक, ओम नमो नारायण। सारी की सारी सभा जोर से उस मंत्र को उच्चारण करती है, एक खुशी की लहर सभा में छा जाती है। वो फिर से उस मंत्र का उच्चारण करता है जोर से, फिर से वो लहर फैलती है और सब लोग उनके पीछे वो मंत्र जाप करते हैं। और ये कार्य जब पूरा होता है तो रामानुजाचार्य को लगता है मुझे वापस गुरु को जाकर बताना है, पर उनके जाने के पहले ही गुरु तक ये समाचार पहुंच जाता है कि मैंने जो मंत्र गुप्त था, वो जो दिया था, वो इसने सारे लोगों को सुना दिया। इतना अनर्थ, इतना बड़ा पाप, घोर पातक। और जैसे ही रामानुजाचार्य पहुंचता है अपने गुरु के पास, वंदना करता है, तो गुरु उसको इतना कुछ सुनाते हैं कि मैंने तुझे क्या समझकर वो मंत्र दिया था, मैंने कहा था ये गोपनीय है, किसी को ना सुनाना, और तूने जन साधारण सभी लोगों को सुना दिया। तुमसे बहुत बड़ा पाप होगा, तुम नरक में जाओगे, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी। रामानुजाचार्य कहता है आपने कहा था मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसे यदि कोई उच्चारण करे तो उसकी मुक्ति निश्चित है, श्रीहरि के चरणों में उसकी भक्ति फिर से प्रगाढ़ हो जाती है। और रही बात मेरी, तो मैंने ये सोचकर सबको मंत्र दिखा सुनाया कि यदि इस पाप की वजह से मुझे नरक जाना पड़ा तो ठीक है, मैं तो अकेला नरक चाहूंगा, पर मेरी वजह से वो सारे लोग जिन्होंने ये मंत्र सुना और जिन्होंने इन मंत्र का उच्चारण किया, वो सभी प्रभु भक्ति के पात्र हो जाएंगे, उन सभी की मुक्ति हो जाएगी, और उनके कल्याण के लिए मैंने ये मंत्र सबको सुना दिया और आपकी आज्ञा का की अवहेलना की, और इस पाप के लिए मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। गुरु जब ये बात सुनते हैं रामानुजाचार्य की, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना उदार चित्त, इतनी उदार भावनाएं, सारा विश्व जिसे परिवार लगे, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहां है। और गुरु उससे कहते हैं कि मैं हार गया, आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तो मंत्रों में ऐसी शक्ति है, मंत्रों में ऐसी शक्ति का वर्णन बताया हुआ है, मंत्रों से असंभव संभव हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में दिखाया है, द्वापर से अब तक मंत्र साधना लोगों ने की है, और जब सृष्टि मंच पर स्वयं सभी मंत्रों का जो स्रोत है, सभी मंत्रों का जो मालिक है, जो सभी मंत्रों से जिसकी प्राप्ति हो सकती है ऐसा सोचा गया था भक्ति में, वो स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता है, तो वो भी हमें कुछ मंत्र देता है। और वो एक एक मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आत्मा जो सोई थी, आत्मा जो रूहानी बेहोशी में थी, उस बेहोशी से, उस निद्रा से, त्यज मोह निद्रा, गीत में सुना, एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही है, बच्चा अभी छोटा है, अभी तो जन्म लिया है उसने, उसको सुना रही है मदालसा। दक्षिण की ये संत अपने बच्चे को ये नहीं कह रही है जैसे दूसरी माएं कहती है, वो कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार मोह निद्रा, हे आत्मन तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम जीवन मुक्त हो, तुम बंधन मुक्त हो, शुद्ध हो, जाग मोह निद्रा से, जाग। तो भगवान भी जब धरा पर अवतरित होते हैं तो हमें निद्रा से जगाते हैं, अज्ञान निद्रा से जगाते हैं, स्थूल निद्रा से भी जगाता है और विस्मृति की निद्रा से भी जगाता है, और हमें नए मंत्र देता है, और ऐसे मंत्र देता है कि जिन मंत्रों का उच्चारण करते, जिन मंत्रों का पालन करते, जिन मंत्रों की साधना करते, हम साधारण से असाधारण बन जाते, मनुष्य से देवता बन जाते, और हमारा पुरुषार्थ प्रखर तीव्र गति वाला बन जाता है। तो ये साल पूरा हो रहा है, नया आ रहा है, 19 और 20 में 19-20 का अंतर ना रहे, ज्यादा अंतर रहे। इस पुरुषार्थ को प्रखर करने के लिए ऐसे स्वयं भगवान ने जो सुनाए हैं ऐसे 10 मंत्रों की आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो एक मंत्र ही काफी है, पर वो मंत्रों का सागर है, उसके पास एक नहीं दो नहीं कई विधियां हैं, क्योंकि वो एक आदर्श शिक्षक है, वो परम गुरु सतगुरु है, वो आता है और आत्माओं में बल भर देता है, उसके शब्दों में जादू है, वो केवल शब्द नहीं शब्दों में शक्ति है जो सीधा दिल पर वार करते हैं, और आत्मा कैसी भी स्थिति में हो वहां से उठ जाती है, पंख लगते हैं उसको और उड़ने लगती है। मुरलियों में आता है आत्मा के पंख कट गए हैं जैसे कोई परकटी चिड़िया, कितनी असहाय निरीह कमजोर दुखी तड़प रही है, पंख ही किसी ने काट दिए, फड़फड़ा रही है। आत्मा भी ऐसे ही बन गई थी परकटी चिड़िया। रावण ने हमारा आखेट किया था, भगवान मंत्र देते, पर मंत्रों की साधना का नियम है, जब किसी भी मंत्र की साधना की जाती है तो क्या क्या किया जाता है, किस किस ने मंत्रों का उच्चारण किया है भक्ति मार्ग में, जरा हाथ खड़ा करेंगे, और इधर, और गुरु किस किस ने किए थे भक्ति मार्ग में, माताओं ने ज्यादा किए, भाइयों ने कम, क्यों, क्योंकि वो कहते हम ही गुरु है दुनिया के, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम ही गुरु है। मंत्र की साधना होती है निरंतरता, सतत करना होता है, रोज बिना रुके, कोई बाधा ना आए उसमें। साधना में ब्रह्मचर्य होता है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए तो मंत्र पूरा नहीं हो सकता, सिद्धि नहीं होगी, साधना ही अपूर्ण रह गई तो सिद्धि कहां से होगी। मंत्र एकांत में जाप किया जाता है, किसी निर्जन स्थान में बैठकर एकाग्रता से, वो मुख से जाप करते हैं तुम्हें मन से करना है, अ जपा जाप द चैंटलेस चैंट, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, ये मंत्र अंदर ही अंदर घोटना है, स्मरण करना है, अभ्यास करना है। तो आज के इस सत्र में, आज की इस भट्टी में ऐसे हम 10 मंत्रों की साधना करेंगे। एक एक मंत्र बहुत शक्तिशाली है जो बाबा ने दिया है, और नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष तपस्या का वर्ष हो जाए हमारे लिए। बहुत सो लिए, बहुत गफलत में रहे, बहुत गाफिल रहे, अब जागना है। सबसे पहला मंत्र, अब घर जाना है। ये सारे मंत्र हम सब ने बहुत बार सुने हैं, पर उनका अनुभव करना है। अब घर जाना है, अर्थात ये स्थान हमारा नहीं है। अब घर जाना है, अर्थात ये घर हमारा नहीं है। अब घर जाना है, अर्थात ये रावण का घर है, ये रावण का पिंजरा है। हमें इस संसार में रहना नहीं है। इस संसार से विरक्ति, इस संसार से अनासक्ति, इस संसार के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सब कुछ। सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने स्थान को देखा और स्थिति को देखा, और स्थिति को हलचल में लाने वाली दो बातें थी। एक थे व्यक्ति, आत्माएं, लगाओ, झुकाओ, अच्छा लगता है, सेवा का साथी है। और दूसरा था साधन, हमारी साधना साधनों पर निर्भर ना हो, हमारी साधना निराधार हो, हमारी स्थिति भी निराधार हो। इस संसार का कोई व्यक्ति, इस संसार की कोई वस्तु, इस संसार का कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण हमारे लिए त्याज्य है, गौण है। अंदर से विरक्त अवस्था हो, संसार में रहते हुए, संसार के लोगों के साथ बात करते हुए लौकिक अलौकिक सारे संबंधी सब मरे पड़े हैं। योग वशिष्ठ का वर्णन मुरलियों में आता है। उस शास्त्र में श्री राम की स्थिति का वर्णन है। श्री राम अभी वनवास गए नहीं है, अभी महलों में ही है, महलों की सुख सुविधाएं है, पर दिखाया है राम विरक्त है। महलों को देखकर, सुख सुविधाओं को देखकर, वहां के पंच पकवान और भोजनों को देखकर राम के मन में अनासक्ति का भाव है, दुख होता है, उसको पीड़ा होती है जब देखता है लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं। ऐसी राम की विरक्त स्थिति का अनुभव दिखाया है। जब वो महलों में ही है तभी, वनवास में जा रहा है तब तो कुछ और। बाबा ने कहा है तुम वनवाह में हो, ब्राह्मण जीवन वैसा ही हो जो राम ने 14 वर्ष बिताए, वैसा तपस्वी भोग विलासी नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, उदासी 14 बरस राम वनवासी। तुम वनवाह में हो, राम का क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या करता है वन में? राक्षसों का वध करता है, अकेला साधना करता है, ब्रह्मचर्य में स्थित है। साधारण वेश है, तापस वेश, विशेष उदासी, उदास है। उदास शब्द का अर्थ वो नहीं जो हम समझ रहे, उदास शब्द का अध्यात्म में दूसरा अर्थ है। उदास अर्थात अनासक्त, उदास अर्थात दुखी, ये अर्थ तो है ही, पर एक दूसरा अर्थ भी है उदास का। एक सांप्रदाय है उदासी सांप्रदाय, इसका मतलब ये नहीं वो लोग मिलके दुखी होते हैं। गुरु नानक देव जी के एक पुत्र ने उनका अनुसरण किया, दूसरे पुत्र ने नए सांप्रदाय का निर्माण किया, उस सांप्रदाय का निर्माण नाम था उदासी सांप्रदाय। वो वैरागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जहां पर भी रह रहे हैं वहां से अनासक्त। आज इस स्थान पर है, कल दूसरे स्थान पर होंगे, अनासक्त। आज इन लोगों के बीच है, कल उन लोगों के बीच में होंगे। बाबा ने सुबह की अव्यक्त वाणी, ब्रह्मा बाप ने किसको याद किया? फलानी बहुत अच्छी थी, फलानी को याद किया? किसको याद किया? किसी को ही याद नहीं किया। प्यार सबसे बहुत ज्यादा था बच्चों से, पर अंत में कोई भी याद न आए, ऐसी वैराग की अवस्था थी। अब घर जाना है, इस घर से ममत्व हट गया है। इस संसार से, यहां के लोगों से, यहां की बातों से मन विरक्त है। ये पहला मंत्र कि हम जिस घर से आए थे वो घर पुकार रहा है, जिस घर से आए से, जिस स्थिति में आए से, परसों की साकार मुरली थी वो है निराकारी सृष्टि, ये है मनुष्यों की सृष्टि, वो है देवताओं की सृष्टि, वो निराकारी सृष्टि पुकार रही है। क्योंकि निराकार में जो आनंद है वो साकार में कहां, वो घर पुकारता है, खींचता है, बुलाता है। इसके लिए बार बार अभ्यास करना है, अब घर जाना है। ये गीत तो सुना होगा ना, कब बजाते हैं यज्ञ में, जब कोई शरीर छोड़ता है तब। ऐसे अनुभव करना, आज मैं ही शरीर छोड़ने वाला हूं, आज मेरे लिए ये गीत बजना है, तो अपने घर में एक बार तो बजा ही लेना ये गीत। कोई पूछे कौन मरा तो क्या कहेंगे, बताना मत। विदेश में एक प्रथा थी, जब भी कोई मरता था तो चर्च की घंटियां बजती। एक अंग्रेजी कवि है, उसने कविता लिखी है, उस कविता का हिंदी अर्थ है, अंग्रेजी की कविता है कि जब भी कोई बेल बजे चर्च की और कोई पूछे कौन मरा, उसको कहना तुम खुद ही। जब भी कोई घंटी बजे और पता चले कोई मरा है, ये सोचना मैं ही मरा हूं। इट बेल्स फॉर दी, ये तुम्हारे लिए बज रही है जैसे घंटी। अब घर जाना है, यहां अब मेरा कोई नहीं। और एक वाक्य को अपनी डायरी में लिख के रखना है, सभी इस संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त मेरा सगा कोई भी नहीं। सब कैसे हैं, प्राय है। जीवन में जब सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी व्यक्ति की, हम पाते हैं हम अकेले। इन टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नीड वी आर अलोन। सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता है, उसी समय वो नहीं रहेगा। एक भगवान के सिवा कोई भी सहारा नहीं। आज की अव्यक्त वाणी, किसी को भी सहारा बनाया, झुका होगा, लगा होगा, वो हद का सहारा होगा। बाबा ने कहा जब कुछ बनाते हो तो वो चीज क्या कर दी है, किनारा छोड़ती है। किनारा कर दो, किनारा छोड़ दो, किनारे हो जाओ। अब घर जाना है, घर पुकार रहा है। घर से दूर हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे अपने आप से बात करनी है। जैसे लौकिक घर से कहीं दूर चले जाते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। एक महीना गुजर गया, फिर क्या होता है, घर की याद आती है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। पहले तो परेशान थे वहां पर, यहां से दूर जाना है, और वहां जाने के बाद दुखी हो जाते। चाहे कितना भी अच्छा हो, पर होम स्वीट होम ऐसा कहा जाता है। तो स्वयं को याद दिलानी है इस संसार में रहते हुए। यह पहला मंत्र है, इस मंत्र का जाप नहीं करना है। अब घर जाना है, 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 अब घर जाना है। जाप भी करो तो भी ठीक है, याद तो रहेगा, नहीं तो भूल ही जाते हैं। समझते यही मेरा घर है, और भाई सोचते इस घर का मैं मालिक हूं, सब मेरी बात माननी चाहिए सबने। दूसरा मंत्र, बीती सो बीती। पुराने वर्ष में जो हो गया वो हो गया, अब उसका कोई चिंतन नहीं, अब उसका कोई पश्चाताप नहीं। बहुत खराब हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस लिए हुआ, सोचते रहना, दुखी होते रहना, ये सीन क्यों आई, ये दृश्य बहुत खराब है मेरे जीवन के इस नाटक का, क्यों ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था, वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस नाटक का हर दृश्य हमारा शिक्षक है। इस नाटक का हर दृश्य क्या है? शिक्षक, टीचर है। छड़ी लेकर खड़ा है, तुम वैसे नहीं समझ रहे थे, इसलिए दृश्य बहुत जरूरी था। उस दृश्य ने ही शिक्षक बनकर वो सिखाया कि यह है सत्य। आज की मुरली में सूक्ष्म परखने की शक्ति है ही नहीं, जान नहीं सकते ना समझ सकते हैं ये मोह है, ये बंधन है, ये बाधा है, ये रस्सी है। सूक्ष्म को कैसे जानोगे? सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म महीन बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म को पकड़ने के लिए सूक्ष्म परखने की शक्ति चाहिए। वो नहीं आ रही थी तो ये नाटक के दृश्य सिखाएंगे। चाबुक की मार लगेगी तब मोह टूटेगा, तब तक नहीं जाता है। नहीं तो व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं, उस व्यक्ति से एक दिन जब बहुत दुख मिल जाता है तब वैराग आता है उससे। एक व्यक्ति के पास एक पालतू कुत्ता है, बहुत ही प्यार करता है उससे, गोदी में बिठाता है, खाना साथ खेलते हैं, घूमते फिरते सब कुछ साथ। इतना मोह, इतनी आसक्ति है उस कुत्ते के साथ कि उसके बिना व्यक्ति को चैन नहीं आता है। उस व्यक्ति का दोस्त एक दिन आता है, कहता है ये तुमने क्या कर रखा है, इस कुत्ते को इतना अपने समीप आने दिया, उससे बीमारियां होगी, ये होगा, वैसा होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और डरा देता है उसको। तो कहता है अब मैं क्या करूं, वो तो अपने आप ही आ जाता है मेरे पास, अब कुत्ता, कुत्ते को भी तो कितना मोह हो गया है। वो कहता है जब भी आए ना उसको छड़ी से मारना। वो कहता है ठीक है। तो कुत्ता जब भी आता है छड़ी से मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, फिर दूर चला जाता है कुत्ता। पर इतने से सुनता थोड़ी ना है, कुत्ता फिर आता है, फिर मार पड़ती है, फिर आता है, फिर मार पड़ती है, फिर आते है। जिस व्यक्ति को और जिस वस्तु को इतना समय पकड़ के रहा, जिस दिन संकल्प आया कि मुझे अब इस वस्तु को और व्यक्ति को छोड़ना है, हम तो छोड़ रहे हैं पर वो वस्तु हमको पकड़ रही है। अब हमने तो सोच छोड़ने का संकल्प कर लिया है, परंतु वो वस्तु अब हमको पकड़ के है। इसलिए पुरुषार्थ तो बहुत तीव्र चाहिए, प्रखर चाहिए। आज की मुरली में है, रस्सी पतली है, सूक्ष्म है, तो उनको काटा जा सकता है, पर एक बार रस्सा बन गया तो क्या करोगे? तब तो मुश्किल है। नदी में एक व्यक्ति देखता है काला काला ब्लैंकेट, सोचता है किसी का होगा, कूद जाता है उसको लेने के लिए, कंबल, और पकड़ता है उसको, और फिर वहीं फंस जाता है। लोग कहते क्या हुआ, आओ आओ। वो कहता है मैं समझा था ये एक कंबल है, परंतु ये तो भालू है। लोग कहते आ जाओ, वो कहते अब मैं कुछ नहीं करता, अब उसने मुझे पकड़ रखा है, अब मैं कैसे आऊं? पहले तो मैं पकड़ने गया, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, पर वो मुझे छोड़ता नहीं है। तो देखना है किस भालू ने मुझे पकड़ के रखा है, मेरे जीवन के भालू कौन कौन है। भालुओं की थोड़ी सूची बनानी है, एक जिसके पास पहले हम गए थे और अभी उनसे वैराग है, पर वो हमको पकड़े हुए है, अब छोड़ते नहीं। तो बीती सो बीती, जो हो गया वो हो गया, अब उसका कोई चिंतन नहीं, अब उसको बदला नहीं जा सकता। भगवान भी धरा पर आ जाए तो क्या ड्रामा की कोई सीन बदल सकता है? तुम्हारे जीवन में ये बहुत खराब हुआ, बाबा कहता है ठीक है मैं बदल देता हूं, होगा ऐसा? परमात्मा दो डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है, कर्म और प्रकृति। प्रकृति के डिपार्टमेंट में वो नहीं घुसता है और कर्मों के डिपार्टमेंट में घुसता नहीं है। हो इस कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। जिसने जो किया है अच्छा या बुरा एक दिन उसको फल मिलेगा। आज की मुरली में है बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, नहीं तो क्या होगी, वृद्धि होगी, घाव नासूर होगा। सच सच बता दो वो अविनाशी वैद्य है। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। कब तक दुखी होते रहेंगे, कब तक पश्चाताप करते रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे, अपने आप को ही प्रताड़ित करते रहेंगे। नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, कौन क्या कर सकता है। वही सत्य है जो हुआ, और अब उसी से सीखना है, उसी को अपना शिक्षक बना देना है। कुछ दिनों पहले मुरली थी, माया बहुत जबरदस्त है, माया बहुत शक्तिशाली, गिर गए अब उठो खुद खड़े हो जाओ। कुछ दिन पहले एक मुरली थी, उस परीक्षा की जांच करने के लिए पेपर को विदेश भेजा जाता है, तुम अपने पेपर की जांच स्वयं करो। सुना था, अभी अभी मुरली आई थी, अपने पेपर की जांच स्वयं करो। कितने मार्क्स देंगे खुद को, दूसरे अगर कम मार्क्स दे तो हम लड़ाई करते हैं कि इन्होंने पेपर ठीक से नहीं चेक किया हमारा, फिर से चेक करो, ये यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है कुछ, ये लोग ठीक नहीं है, यहां पक्षपात होता है। पर यहां पेपर किसको चेक करना है, मुझे अपना ही पेपर चेक करना है। कितना देंगे, 100 दे देंगे अपने आप को, ये इंद्र सभा है, झूठ यहां चल ना सके। कितना देंगे, कौन कौन 100 देगा अपने आप को, जरा हाथ खड़ा करना, कोई नहीं। स्वयं का पेपर स्वयं ही चेक करना है। कठोर शिक्षक बनना है, छोटी सी छोटी गलती को पकड़ना है। तो जो हो गया वो हो गया, अब उसको चितो नहीं। तीसरा मंत्र याद रखना, हम सब पूछेंगे क्लास के बाद। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात चैरिटी अर्थात दान पुण्य कहां से शुरू करनी है, घर से, और सबसे बड़ा घर है मैं आत्मा स्वयं। बाबा कहते अपने आप को खुद आशीर्वाद दो, बाप कहते अपने ऊपर खुद दया करो। चार पांच दिन पहले मुरलियों में था, स्वयं को स्वयं ही तिलक लगाओ। सारी शुरुआत अपने आप से करनी है, सारा परिवर्तन अपने आप से करना है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को ही बदलना है। हम ना किसी को जबरदस्ती यहां ला सकते हैं, ना ही किसी को यहां से भेज सकते हैं। कोई जा रहा हो तो ना ही हम उसे रोक सकते हैं, ना किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। हमारी चाहना है कि ये ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए, पर किसी को जबरदस्ती ज्ञान में नहीं लाया जा सकता। या ला सकते हैं, रोज अपने अपने बच्चे को जो ज्ञान में नहीं चलते उनको यहां आके बिठा दो जबरदस्ती, क्या होगा, चलेंगे ना? घोड़े को सरोवर तक लेके जाया जा सकता है, पर पानी पिलाया जा सकता है क्या? नहीं। हमें जो कुछ करना है किसके साथ करना है, खुद के साथ। सूफी संत ने लिखा है, मैं जब छोटा था सोचता था दुनिया बदल दूंगा, इतना जुनून था, इतना उमंग उत्साह था, क्या करूं विश्व के लिए और क्या नहीं करूं, संसार की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती, सोचता है संसार को बदल दूंगा, छोटा था। फिर युवा हुआ, युवा होने के बाद पता चला इस संसार को बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। पर मैं अपने समाज को तो बदल सकता हूं, जिस समाज में मैं रहता हूं वो छोटा है, उस पूरे समाज को बदल दूंगा। और थोड़ा बड़ा प्राउड हुआ, सोचा ये समाज वाले सुधरते थोड़ी है, समाज वाले मानेंगे कभी हमारी बात कि बहुत अच्छा करते हो तुम, अच्छी बात है जाया करो वहां पर, ओम शांति में जाते हो बहुत अच्छा, ऐसा बोलते। उसने लिखा मैंने समाज को बदलने की कोशिश की, समाज कहां बदलता है। फिर सोचा समाज को छोड़ो अब मैं अपने परिवार को बदल दूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चे ये तो मेरे अधिकार में है, बदल के रहूंगा उनको, देखता हूं कैसे नहीं बदलते। और अब लिखता है बूढ़ा हो गया हूं, अब पता चला ना तो मैं परिवार को बदल सका, ना इन बच्चों को, इस पत्नी को, किसी को नहीं बदल सका, मैं केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूं और वो कौन है, मैं। फिर भगवान से पूछा, भगवान से पूछा, खुदा से पूछा, खुदा ने कहा अब बहुत देर हो गई, पर अब कैसे बदलोगे अपने आप को, जो काम करना था बहुत पहले करना था, तब तो दूसरों को बदलने में लग गए। दादी जानकी ने एक बार कहा था अगर इस परिवार में दुश्मन पैदा करने हैं तो एक काम करो, जा जाकर एक एक को शिक्षा दो, समझाने दो, श्रीमत सुनाओ, बताओ ये करना है ये नहीं करना है, उनकी कमियां कमजोरियां उनको बताओ, तो क्या होंगे झगड़े और नए नए दुश्मन पैदा होंगे। किसी को जाके बताओ आज मैंने तुमको योग में सोते हुए देखा, तो क्या करेगा वो, अगले दिन से हम पर निगरानी रखेगा हम कब सोते हैं, और जैसे ही पकड़ा कि बस आ जाएगा, तुम खुद सोते हो। जैसे ही हमने किसी को बताया जाके आज की मुरली की ये पॉइंट खास तुम्हारे लिए थी, चार दिन के बाद वो बताएगा आज की पॉइंट तुम्हारे लिए है। जो कुछ करना है हमें किसके साथ करना है, अपने साथ। जो कुछ करना है अपनी भावनाओं के साथ करना है, अपने विचारों के साथ करना है, अपनी कल्पनाओं के साथ करना है, अपनी दृष्टि के साथ, अपनी वृत्ति के साथ, अपने स्वप्न के साथ, अपने ही संस्कारों के साथ, अपनी ही बुद्धि के साथ, अपने ही धन के साथ, अपने ही संबंधों के साथ, अपने ही वाणी के साथ, अपने ही बोल के साथ। वो क्यों नहीं बदलता, उसकी वाणी ऐसी कर्कश क्यों है, वो जब भी बोलते ऐसे क्यों बोलते, उसको जो बोलना है बोलने दो। लक्ष्मण उत्तेजित होता है जल सम वचन बोले रघुनाथा, पर राम के वचन कैसे है, जल समान शीतल है। राम उत्तेजित नहीं होता है पर लक्ष्मण को तेजना होती है, उसकी ये हिम्मत मैं देख लूंगा उसको। किस किस को देख लोगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, दान पुण्य पुण्य कर्म पहले मुझे करने, जोटे सो अर्जुन बाकी फिर दूसरे। चौथा मंत्र, दिल साफ मुराद हासिल। अगर मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होनी करनी है तो मंत्र है दिल कैसा हो, स्वच्छ हो, उसमें कुभावनाएं कुसंस्कार ना हो, किसी का अहित कर दूं ये भावना ना हो, इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो सबका हित हो, फॉर द गुड ऑफ मेनी फॉर द बेटर ऑफ मेनी। इसके लिए सभी की सेवा करते रहना, परसों पांडव भवन में एक विदेशी बहन क्लास करा रही थी, उसने कहा विश्व के हर देश में मैं घूमी, अभी न्यूजीलैंड में है। कहा कि ज्ञान में आने से पहले मुझे याद है वो दिन मेरे घर में मैं झूले में झूलती थी और सोचती थी क्या ऐसी दुनिया होगी जहां सुख ही सुख है, वहां पे दुख ना हो। और फिर अचानक से ज्ञान में आ गई एक दिन, और जैसे ही ज्ञान में आ गई अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहती थी रोज। बहुत खुशी रहती थी, बहुत खुशी रहती थी, बहुत खुशी रहती थी। पर बाद में पता चला ये खुशी है, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस अभी चालू नहीं हुई है, शुद्धिकरण अब तक चालू नहीं हुआ है। केवल ज्ञान में आने मात्र से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती। शुद्धि के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ, साधना, तपस्या। खुशी है बहुत, भगवान मिला है, परिवार मिला है, यज्ञ मिला है, पर ये प्राप्तियों के आधार पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता अपने आप में क्या है? साधना, तपस्या है। दिल साफ अर्थात पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध, निर्विकार। एक दिन का काम है या कई दिनों का या जीवन भर का? लक्ष्य रखना है कि मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। एक शिष्य गुरु से पूछता है मैं क्या पुरुषार्थ करूं? वो कहता है जाओ वो जो सामने दुकान है ना, पूरा दिन वहां बिताओ, वहां तुम सीखोगे तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना है। वो वहां जाता है, वो शराब की दुकान है, वो कहता है ये गुरु ने मुझे कहां भेज दिया, शराब बिकती है, रेस्टोरेंट है, लोग खाना खाते हैं, दिन भर वहां बैठा रहता है, देखते रहता है। एक चीज को वो नोट करता है कि वो जो वॉश बेसिन है जहां लोग हाथ धुलाई करते हैं, उसके ऊपर एक आईना है, और जो दुकान का जो मैनेजर है, मालिक है, वो बीच बीच में जाता है, एक एक दो दो घंटे में उस आईना को साफ करता है। शिष्य सारा दिन वहां रुकता है, रात में पूछता है उस मैनेजर को ये आप क्या करते रहते हो? वो कहते हैं आईने में मिट्टी लगती रहती है इसलिए मैं उसको साफ करते रहता हूं। वापस आता है शिष्य, गुरु से कहता है ये देखा, गुरु कहते यही तो सिखाने के लिए तुम्हें भेजा था, मन दर्पण है, विचार धूल है। विचारों की धूल मन के दर्पण पर पड़ती ही रहती है दिन भर, कुछ करो या ना करो। इसलिए क्या होना चाहिए? सफाई अभियान। सफाई का कार्य निरंतर चालू रहे, हर दिन चालू रहे, बार बार चालू रहे, घंटे घंटे में चालू रहे। कितना भी व्यस्त हो बीच में अलग होकर सफाई सफाई करनी है। इधर समान से सफाई होगी, रूहानी ड्रिल से सफाई होगी, आत्माभिमानी स्थिति से सफाई होगी, स्मरण करने से सफाई होगी, इस मंत्र जाप से सफाई होगी, अजपा जाप। दिल को साफ करना है। नया वर्ष चालू हो रहा है, पुराना वर्ष खत्म हो रहा है, पुराने वर्ष की सारी कड़वाहट, सारे झगड़े, सारे बदले की भावनाएं, कुभाव, कुस्वप्न, कुसंकल्प, कुदृष्टि, कुवृत्ति, जो कुछ अनुचित घटित हुआ जो पाप हुए, जो पातक हुए, जो कुकर्म हुए, जो विकर्म हुए, इसको धुलाई करनी है इन सब की, और नया वर्ष नवीनता वाला वर्ष हो, नई चीजें लाने वाला वर्ष हो, नया उमंग उत्साह वाला वर्ष हो। उसके बाद में अगला मंत्र, ये द इटर्नल मंत्र है, अविनाशी मंत्र है इस यज्ञ का, जो प्रथम मंत्र है, और वो जो हम रोज कहते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं, है तो बहुत छोटा ओम शांति, परंतु उसके अर्थ बहुत बड़े हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। मैं शांत स्वरूप, मेरा घर शांति का घर, और मेरे पिता शांति के सागर। बीच बीच में यही साधना करनी है, ओम शांति, ये साधना है। मैं शांत स्वरूप हूं, मेरा घर शांति का सागर है, शांत मेरे पिता शांति के सागर है, और मेरा घर शांति धाम है। कितना छोटा सा अभ्यास है, पर कठिन से कठिन परिस्थिति में ये शांत कर देगा। चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ आवाज है, चारों तरफ जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और सब भाग दौड़ चालू है। छोटा सा संकल्प, हम मुख से तो बोलते हैं, परंतु मुख का बोला हुआ मन तक कहां पहुंच रहा है? वो बोल रहे हैं क्योंकि आदत सी है, अनुभव नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूं, मेरा घर वो है जहां शांति के प्रकंपन है, और मेरा पिता वो है जो शांति का सागर है। उस शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही है। अगला मंत्र, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी वाली किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ खड़ा करना जरा। अभी नए वर्ष के लिए होमवर्क सभी को, जिसने नहीं पढ़ी है वो ये किताब पढ़ेंगे। क्या नाम है किताब का? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, फॉलो फादर। ये सुना तो सबने है, पर फॉलो जिसको करना है उसके जीवन के बारे में हमको क्या क्या पता है? बहुत कम। जो हमने कोर्स में कहानी सुन ली थी वो सुन ली थी, जो थोड़ा बहुत पता था वो पता है, पर उसमें वृद्धि नहीं हुई है। व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या है वो समझने के लिए उसके जीवन के कई सारे पहलुओं को समझना पड़ता है। यदि हमसे कोई कहे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत का प्रधानमंत्री है उसको हमको जानना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। एक दूसरा, उसके संबंधित जितनी बातें हैं वो सब पता करनी पड़ेगी। तीसरा, क्या इतना पढ़ने से और जानने से हो जाएगा? क्या हम उसको कह सकते हमने उनको जान लिया? किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। जब तक उसके साथ नहीं रहेंगे उसको हम नहीं जान सकते। और भगवान तो इस संसार का ऐसा व्यक्तित्व है जो सारे 5000 वर्ष तक एक रहस्य है। ऐसे रहस्यमय व्यक्तित्व को अगर जानना है तो उसके समीप रहना पड़ेगा। फॉलो फादर अर्थात फॉलो शिव बाबा ऑल्सो और फॉलो ब्रह्मा ऑल्सो। तो परमात्मा को जानने के लिए उसके समीप रहना पड़ेगा। वो कहां रहता है और हम कहां रहते हैं? बाबा के महावाक्य है, तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, और जिसका जिससे प्यार होता है उसको उसके साथ रहना होता है। मैं रहता हूं ऊपर तुम नीचे क्यों, मैं हूं अव्यक्त तुम व्यक्त क्यों, मैं हूं आवाज से परे तुम आवाज में क्यों। अगर उसको जानना है तो उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर ब्रह्मा को जानना है तो सबसे पहले तो ब्रह्मा की जीवनी पढ़नी होगी। तो सभी इस भट्टी में ये संकल्प करेंगे। कौन कौन प्रॉमिस करता है वादा कि हम ये किताब पढ़ेंगे? जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सारे हाथ खड़ा करेंगे। और किताब कहाँ मिलेगी? हम अभी किताब को कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलती है, हमको क्या बता रहे? भगवान को ढूंढ लिया, किताब को नहीं ढूंढ सकते? हमें तो वो नहीं आता, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं क्या रहती है। बाइबल में एक जगह लिखा है, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। दरवाजा खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा। बैठे हैं एक जगह तो कहाँ कुछ होगा? दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। फॉलो फादर अर्थात फॉलो ब्रह्मा। उसने क्या क्या किया? हर मुरली में थोड़ा थोड़ा आता है, आज की मुरली में भी आया है। ना कोई लगाव, ना कोई सूक्ष्म रस्सी, ना किसी की याद, सारे किनारे छोड़ दिए, अनासक्त वैरागी। ये अवस्था है ब्रह्मा की, जीवन मुक्त, योग युक्त, बंधन मुक्त, कर्मातीत। चार शब्द आए। सभी की, सभी ने मुरली सुनी आज की? अव्यक्तवाणी, वस्तु व्यक्ति वैभव सबसे परे, कर्म कर रहे कर्म स्पर्श ना करे, टच ना करे। कर्म कर दिया, हो गया, भूल गए। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हम ऐसा भी करते हैं, हम वैसा भी करते हैं, हमने ये प्रोग्राम किया, हमने वो प्रोग्राम किया, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, हमने उसको ज्ञान सुनाया, हमने प्रदर्शनी समझाई, हमने कुछ किया क्या? कि कोई और कर रहा था? अनासक्त, उसके बाद में अगला मंत्र गीता का मंत्र, मन मना भाव। सबने सुना है ना मंत्र? ये अपना मन कहां लगा? मुझ में लगा। मन मना भाव मध्याजी भक्तो माम नमस्कुरु। गीता में दो बार आया है ये मंत्र, छठवें अध्याय में और अठारहवें अध्याय में। थोड़ा थोड़ा अंतर भी है उसमें, ये लाइन तो सेम है एक लाइन, नीचे की जो लाइन है उसमें थोड़ा अंतर है। याद के चार्ट को बढ़ाना है। याद प्रकाश है, माया अंधकार है। अगर याद में है तो वहां अंधकार नहीं आ सकता, कोई विकार नहीं आ सकता। आत्मा उसी को याद कर रही है, उसी में डूबी हुई है। और रोज हम सुनते हैं, और जो चीजें रोज ज्यादा ही सुनी जाती है वो भूल जाती है, वो सामान्य सी हो जाती है। नए वर्ष में नवीन तरीके ढूंढने हैं याद के, कैसे कैसे याद करें। उसके बाद में आठवां मंत्र, हत्कारडे दिलियारडे अर्थात कर्मयोगी। सारी दिनचर्या में जो भी कर्म हो रहे हैं, कर्म के साथ बाबा की याद जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे? भोजन बना रहे तो क्या सोचेंगे माता है? क्या कर रहे हैं? क्या सोचेंगे भोजन बताते समय? कि मैं भोजन बनाऊंगी, इतना टेस्टी बनेगा और सब लोग कहेंगे वाह वाह वाह, ऐसा सोचती है? क्या सोचते है? क्या सोचना चाहिए? कुछ दिन पहले मुरलियों में था, रोटियां बेलते समय बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अव्यक्तवाणी थी। तीन चार संडे पहले छोटे छोटे कार्यों के साथ क्या जोड़ना है याद, छोटे छोटे कार्यों के साथ समान को जोड़ना है। कल रात जैसे बहन जी ने बताया, हम लोग रास्ता भटक गए थे, कितना दूर कहीं और निकल गए थे। वो जो ड्राइवर भाई थे उनको हमने बीच में कहा, जब भटक रहे थे, थोड़ा आप भी कुछ खा लो। उसने कहा, जब तक आपको पहुंचा नहीं देता कुछ नहीं खाऊंगा। और इस संसार को किसने भटकाया? इस संसार को हम ही ने तो भटकाया द्वापर से। सबसे पहले वाम मार्ग में कौन गए? देवताएं। सबसे पहले भक्ति किसने चालू की? हमने। तो हर कर्म करते करते बीच बीच में समान का अभ्यास, समान को जोड़ना रूहानी ड्रिल का अभ्यास। तो मंत्र है हाथ दिल यार्डे। हाथ कर्म करते रहे और दिल से बाबा को याद करते रहे। नौवा मंत्र, हुक्मी हुकुम चला रहा। सारे कर्म जो हो रहे हैं वो करा रहा है, हम केवल निमित्त है। पानी की टंकी देखी है सबने? ऊपर टंकी है, नीचे नल है। नल अगर कहे कि मैं पानी देता हूं सबको, तो क्या कहेंगे? नल को अहंकार आ गया है कि पानी देने वाला कौन है, और ऊपर से टंकी कहते हैं मैं तुम्हारा पानी बंद कर देती हूं, तो कहा गया हम सब क्या है? नल। क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं, पर पानी यहां कहां से रहा है? ऊपर से। इसके लिए किस बात का अहंकार, किस चीज का अहंकार कि मैं पानी देता हूं इसका? वो पानी चाहे तो दूसरे नल से पानी देना चालू करेंगे, कर देगा। ये भाग्य है कि पानी मुझसे बह रहा है, ये क्या है? मेरा भाग्य है कि उस टंकी ने इस नल को चुना, नहीं तो उसके पास नलों की कमी है क्या? इस पूरे शहर में क्या हमसे योग्य लोग नहीं है? बहुत सारे हैं। या हम ही बुद्धिमान हैं? हमसे भी अधिक बुद्धिमान लोग इस शहर में है या नहीं है? बहुत सारे हैं, योग्य है, बुद्धिमान है, पैसे वाले हैं, पर भगवान ने किसको चुना? हमको। तो अहंकार नहीं, परंतु ये भाग्य है जो उसने हमको चुन लिया। इसके लिए होई सोई जो राम रचि राखा। सब अपने आप हो रहा है, हम निमित्त मात्र है। आज ये हम सेवा कर रहे, कल किसी और को दी जाएगी। और यदि हम सोचे कि ये मैं कर रहा हूं, मैं संभालता हूं, मेरे वजह से सब हो रहा है, ये हमारा भ्रम है। हमसे भी योग्य बहुत सारे लोग हैं। और जो कुछ संगम युग पर हो रहा है वो कौन करा रहा है? भगवान। जो पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं वो कौन करा रहा है? वही करा रहा है। रामायण महाभारत में दिखाया है, अर्जुन आबू पहाड़ी के नीचे से जा रहा है, कहीं से वो भील आते और अर्जुन को लूट लेते। अर्जुन महापराक्रमी, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसको भी हार, उसकी हार हो जाती है। दिखाया है युधिष्ठिर शहर में घूम रहा है, घरों में ताले लग रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसे आश्चर्य होता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्या हुआ? उधर से खबर आती है, युधिष्ठिर पूछता है श्री कृष्ण कहाँ है? पता चलता है श्री कृष्ण तो गए। पांडवों की जो शक्ति थी वो पांडव पति की शक्ति थी, पांडवों की जो शक्ति थी वो कृष्ण की शक्ति थी। जैसे ही दिखा है कृष्ण चले गए, पांडव शक्तिहीन हो गए। पांडवों का अहंकार था कि हमने युद्ध को जीता। दिखाया है महाभारत युद्ध में अर्जुन को भी अहंकार हुआ है कि मैंने सब कुछ जीता। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं रथ से उतरो, अर्जुन उतरता पहले, कृष्ण उतरते फिर अर्जुन उतरते, जैसे उतरता है वो रथ जल के भस्म हो जाता है। अर्जुन को आश्चर्य लगता है वो क्या था। कृष्ण कहते हैं अरे ये रथ तो पहले ही भस्म हो जाना था, मैं खड़ा था इसलिए ये अभी तक भस्म नहीं हुआ था। जब तक शिव बाबा है यहां हमारे जीवन में हम सब कुछ कर पा रहे, वो हमारे जीवन से चला गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। जो आज यहां सब बैठे हैं वहां पे भी नहीं बैठ सकेंगे। उसकी कृपा हुई है। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबकी हुई। जिस पर उसकी कृपा हो जाती है अपने आप सारे विश्व की कृपा होगी उसके ऊपर। तो ये नौवां मंत्र और लास्ट और दसवां मंत्र। हर घड़ी कौन सी घड़ी है, अंतिम, अभी के अभी यहां पर ही शरीर छूट जाए। तैयार है कौन कौन तैयार है कि एक फोन करना है घर पे बताने के लिए सब्जी को कहाँ रखना है, गेहूं कहाँ है, तिजोरी की चाबी वहां रखी है, एटीएम का नंबर ये है, मोबाइल का मेरा वो लॉक ये है, किस किस को फोन करना है घर पे, मैं जा रही हूँ बताने के लिए। कुछ नहीं, ये माता को कुछ भी नहीं करना है, बस अभी के अभी जाना है, उसको फोन कर देना, बहू को ये बोल देना, बेटे को वो कह देना। हर घड़ी अंतिम घड़ी, माताओं की भट्टी थी मधुबन में, कभी बहुत सारी माताएं आई। वो एक माता आई शांति स्तंभ पर बैठी 8 बजे रात को, आधा घंटा कुछ योग किया, कमरे में गई, ठीक थी, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल में लेके आए तब तक मर चुकी थी, खत्म, 1 सेकंड में शरीर छोड़ दिया। सेवा केंद्र था एक, जिसमें 7 बजे मुरली चालू होती थी, 6 बजे रोज एक भाई आता था, बुजुर्ग था, बाबा के कमरे में 1 घंटा योग करता था, फिर मुरली सुनने जाता था बाजू के कमरे में। एक बार आया उस बाबा के कमरे में बैठा, बैठे बैठे वहीं शरीर छोड़ दिया। बहुत साल पहले एक माता मधुबन में आई थी मॉरिशस की, ज्ञान सरोवर में रुकी, अचानक तबीयत खराब हो गई, कोई बीमारी थी नहीं पर अजीब सी उसकी कंडीशन हो गई, लेके आए और कुछ घंटों में ही शरीर छोड़ दिया। बाद में उसका बेटा आया मॉरिशस से डेड बॉडी लेके जाने के लिए, और उसने कहा था, मां ने कहा था मैं मधुबन जा रही हूं वापस नहीं आऊंगी। तो ये समझना कि यही शायद जीवन का अंतिम दिन है, यही अंतिम घंटा है, यही अंतिम क्षण है, और अभी के अभी शरीर छूट जाए तो किस याद में जाऊंगा। घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच चालू है, तभी शरीर छूट गया तो किसकी याद में जाओगे। सीरियल देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, किसकी यादों में जाओगे। न्यूज देख रहे हैं और तभी शरीर छूट गया, बाबा की याद थोड़ी रहेगी। अगर न्यूज देखते देखते और टीवी देखते देखते शरीर छूटा तो उसी की याद में जाएगी। एक आत्मा को हमने देखा था, बहुत सेवाएं की जीवन भर, अंतिम घड़ी आई, कैंसर हो गया, शरीर में कैंसर फैल गया, चिड़चिड़ापन 1 महीना हॉस्पिटल में, और जाते जाते मसाला डोसा खाना है, मसाला डोसा खाना है, और मसाला डोसा की याद में शरीर छोड़ा। बाबा तो था ही नहीं, दूर दूर तक बाबा का कोई नाम नहीं, और सारा जीवन सेवा में अर्पित कर दिया था, पूरा जीवन सेवा की, हजारों लोगों की, पर लास्ट में भगवान नहीं था। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत में राम आया ही नहीं। इसलिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए तो ऐसे कितने हुए, ये 10 मंत्र। सबसे पहला बताया अब घर जाना है. ए फॉर अब घर जाना है. बी फॉर बीती सो बीती, जो हो गया वो हो गया. सी फॉर चैरिटी बिगिंस एट होम. डी फॉर दिल साफ तो मुराद हासिल. ई फॉर इटर्नल मंत्र, अविनाशी मंत्र है यज्ञ का, एक ही मंत्र है ओम शांति. जैसे ही ओम शांति कहो, ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाना. एफ फॉर फॉलो फादर, इसके लिए आप सबको काम दिया है. जिन्होंने वो जीवन कहानी नहीं पढ़ी, आज से ही पढ़ना चालू करो, या तो नए साल में पढ़ेंगे या नए साल चालू होने से पहले पढ़ लेंगे. ऐसा कहेंगे, इसको कहेंगे प्रखर पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ. उसके बाद में जी फॉर गीता का मंत्र कौन सा है, एक ही मंत्र है मन मना भव. उसकी याद में खोए रहना, डूबे रहना, समाये रहना. उसके बाद में एच, एच से तीन बताए. पहला हथ कार्डे दिल यार्डे, दूसरा हुक्मी हुकुम चला रहा. वो करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे. वो कभी दादी जानकी ने एक प्रश्न पूछा था टीचर्स की भट्टी में, अपने आप को क्या समझती हो, सेवाधारी निमित्त या कठपुतली. बहुत पावरफुल प्रश्न है. दादी ने हाथ खड़े कराए थे, टीचर्स हाथ खड़ा करो, अपने आप को सेवाधारी कौन कौन समझते, सब ने हाथ खड़ा कर दी. फिर अपने आप को अब निमित्त कौन समझते, अरे उसमें तो हो गया. और तीसरा पूछा था कठपुतली, और पूछा था तीन में से श्रेष्ठ कौन है. कठपुतली तुरंत अवस्थाएं है, आत्मा की तीन अवस्थाएं है. सेवाधारी से हम चालू करते हैं, धीरे धीरे पता चलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो अपने आप हो रहा है, ये तो किसी और से भी कर सकता था, मुझे तो चुना है. जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं मोहम्मद रफी का, मोहम्मद रफी की आवाज इस संसार की सबसे मधुर आवाज कही जाएंगी, एकमात्र आवाज. उन्होंने कहा है, कितनी नम्रता है, कि खुदा ने आवाज इस हलक में भरी है, इस कंठ में उस भगवान ने आवाज भरी है. अगर वो चाहता तो ये आवाज किसी और कंठ में भी भर सकता था, किसी और गले में भी आवाज डाल सकता था, पर मेरा भाग्य है कि उसने ये आवाज इस गले में डाली. अहंकार नहीं है. हुक्मी हुकुम चला रहा. और लास्ट बताया हर घड़ी अंतिम घड़ी है. तो ऐसे ये 10 मंत्र है. ओम शांति.
अरे चेतरे नर चेतरे थर चिड़िया चुग गई खेतरे नर मुगरा रे. यदि अब तो मन में चेतरे तू अब तो दिल में चेतरे. यदि चेतरे नर चेतरे थर चिड़िया चुग गई खेतरे नर नुगरा रे. यदि अब तो मन में चेतरे हाय अब तो दिल में चेतरे. थारे गुरु के नाम से आंटी रे अब सुने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे. यदि अब तो मन में चेतरे हाय अब तो दिल में चेतरे. ए गुरु के नाम से आती रे अब पुणे चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे. यदि अब तो मन में चेतरे हाय अब तो दिल में चेतरे. यदि चेतरे नर चेतरे
यदि अब तो मन में तेतरे, हाँ अब तो दिल में तेतरे। अरे गुरु जी बतावेगा भेद रे, दस कटे करम की रेख रे, नर निगरारे यदि अब तो मन में तेतरे, हाँ अब तो दिल में तेतरे। ए गुरु जी बतावे भेद रे, दस छुटे जन्म की केद रे, नर मुकरा रे यदि अब तो मन में तेतरे, हाँ अब तो दिल में तेतरे। अरे अब तो मन में तेतरे, हाँ अब तो दिल में।